कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण हर साल की तरह यहाँ श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में बलराम जयंती और जन्माष्टमी के बीच में कृष्ण कथा का विशेष कार्यक्रम होता है। कल बड़े धूमधाम से हम सब ने बलराम जयंती मनाई और आज से कृष्ण कथा जारी रखेंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल रास पंचाध्याय की चर्चा हुई थी और कथा पिछले साल वहां पर समाप्त हुई थी। दसवें स्कंद श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक ये 5 अध्याय बड़े प्रसिद्ध हैं वैष्णव समाज में, और क्योंकि इन 5 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ जो रास लीला हुई इसका वर्णन है, इसीलिए इन 5 अध्यायों को रास पंचाध्याय कहते हैं। तो रास पंचाध्याय समाप्त होती है 33वें अध्याय में और अब 34वें अध्याय से हम कथा जारी रखेंगे। और इस अध्याय में 2 विशेष लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। एक, जब ब्रजवासी गण नंद महाराज आदि श्री कृष्ण बलराम के साथ अंबिका वन नाम के एक स्थान में जाते हैं जहां शिव जी का मंदिर है, और वहां जाके वो शिव जी की उपासना करते हैं, लेकिन वहां पे रात में एक बहुत बड़ा सांप आके नंद महाराज को निगलने का प्रयास करता है और फिर श्री कृष्ण नंद महाराज को बचाते हैं और इस सांप का भी उद्धार करते हैं। तो ये पहली लीला है इस अध्याय में। और दूसरी लीला जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं इस अध्याय में वो ये है कि होली के उत्सव मनाते मनाते जब श्री कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ में रमण कर रहे होते हैं तो वहां पे कुबेर का एक सहायक जिसका नाम था शंखचूड़, वो वहां पे आके गोपियों का भरण करने का प्रयास करता है और फिर श्री कृष्ण उसका पीछा करते हैं और उसे उसका वध कर देते हैं। तो इन 2 लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में है। तो सबसे पहला श्लोक इस अध्याय का है जो हम अब पढ़ने वाले हैं। श्री शुक उवाच एकदा देवयात्राया गोपाला जात कौतुकाः प्रययुस्ते अम्बिकावनम् एकदा
देवयात्राया
गोपाला जात कौतुकाः अनोभिरनुरोध्युक्तैः शिवरात्रि का। तो ये घटना अब है, ये प्रसंग ये चल रहा है कि शिवरात्रि के लिए अब सारे ब्रजवासी अंबिकावन नाम के स्थान में जाना चाहते हैं। शिवजी का बड़ा मंदिर वहां पे है और शिवजी के उपासक वहां जाते हैं। तो शिवजी की उपासना तो अधिकतर शैव करते हैं, लेकिन वैष्णव भी शिवजी को परम वैष्णव मानते हैं। और इस दृष्टि से कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी वैष्णव भी शिवजी की उपासना करते हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस ग्रंथ में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव गण शिवरात्रि को हमेशा नहीं मनाते हैं, कभी कभी मनाते हैं, कभी नहीं मनाते हैं, ऐसे नियमित तौर से मनाते नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब एक बार, या मराठी में बोलते हैं ना एकदा, तो संस्कृत है, सब मूल भाषा तो संस्कृत ही है। तो एकदा मतलब एक बार, ऐसे ब्रजवासियों को इच्छा हुई कि चलो हम शिव जी की उपासना करने जाते हैं अंबिकावन। तो ऐसे शिवरात्रि के अनुष्ठान को मनाने के लिए, शिव जी की उपासना करने के लिए वो चले गए। तो इच्छा की चलो शिव जी की उपासना की जाए, और वो चले गए अंबिकावन। ये स्थान जीव गोस्वामी कहते हैं गुजरात प्रांत में है, सिद्धपुर नाम के गांव के पास में। और यह भागवत में बताया गया है कि ये सरस्वती नदी के तट पर है। हालांकि वहां सरस्वती नदी अब दिखाई नहीं पड़ती है, वहां केवल एक नदी है, तो उपाय जी कहते हैं, जो गुजरात में गए हैं आप जानते हैं, साबरमती नदी। तो खैर ब्रजवासी गण उस समय चले तो गए। तो ये प्रश्न आता है कि ब्रजवासी जो कृष्ण भक्त हैं, वो वृंदावन से गुजरात इतनी दूर जाएंगे शिव जी की उपासना करने के लिए, ऐसे क्यों, क्या आवश्यकता थी, जब उनके पास कृष्ण हैं, कृष्ण उनके बीच में 24 घंटे रहते हैं, कृष्ण उनके प्राण धन हैं, तो उनको शिवरात्रि मनाने की क्या आवश्यकता थी। मनानी थी वो एक बात है, लेकिन इतने दूर जाने की क्या आवश्यकता थी। वैसे अधिकतर जो लोग शिव जी की उपासना करते हैं और शिवरात्रि को मनाते हैं, उनके मन में कोई ना कोई भौतिक कामना रहती है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अंबिकावन नाम के स्थान में सैकड़ों हजारों लोग जाते होंगे, वहां उस समय भी उनके मन में भी ऐसे कोई भौतिक कामनाएं रहती होंगी। परंतु ब्रजवासी किस कामना से या किस भावना से गए? ये ब्रजवासी जो है कोई साधारण लोग तो नहीं है, ये ब्रजवासी भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। इनमें से कई भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो भगवान के धाम से भगवान के साथ में अवतीर्ण होकर यहाँ आए हैं वृंदावन में। उनमें से ऐसे कई हैं जो कि स्वर्गलोक आदि से भगवान के आदेशानुसार अवतीर्ण होकर भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आए हैं। ये सब भक्त हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें जान लेना चाहिए कि ब्रजवासियों की चेतना पूरी तरह से श्री कृष्ण के ऊपर सदैव रहा करती थी, एक क्षण भी वो कृष्ण भावना से रहित नहीं रहते थे। और जो भी कुछ वो करते थे वो श्री कृष्ण के लिए ही करते थे, चाहे वो शिव जी की उपासना करनी हो, चाहे इंद्रदेव की उपासना करनी हो, गोवर्धन की उपासना करनी हो, कात्यायनी देवी की उपासना करनी हो। गोपियों ने कात्यायनी अर्थात दुर्गा देवी की उपासना की, उन्होंने व्रत भी रखा, उपवास आदि किया, लेकिन क्यों किया, ताकि कृष्ण उनको पति के रूप में मिल जाए। अधिकतर जो तरुणियां ऐसे कात्यायनी व्रत या दुर्गा देवी की उपासना के व्रत का पालन करती हैं, हो सकता है वो इस इच्छा से करे कि हमें कोई अच्छा पति मिल जाए। लेकिन जब गोपी ने किया, उनको भी अच्छा पति चाहिए था, लेकिन कौन? कृष्ण। दुनिया का कोई पति नहीं, उनको केवल कृष्ण चाहिए थे पति के रूप में, इसलिए उन्होंने किया। तो उसी प्रकार जो ब्रजवासी गण अंबिका में जा रहे थे शिव जी की उपासना करने के लिए, तो उनके मन में एक ही इच्छा थी कि कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति कैसे बढ़े। शिव जी की उपासना भी हुई तो इसी उद्देश्य से कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जो है वो बढ़ता रहे, ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं। यदि कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है किसी भौतिक कामना के तृप्ति के लिए, तो वो ठीक नहीं है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवत्तु फलम कैशाम तद भवत तिल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मत भक्ताम यान्ति माम अपि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त, जो मेरे देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी बुद्धि कम है, अल्प मेधसाम। क्यों ऐसे? क्योंकि अंतवत्तु फलम कैशाम, क्योंकि जो फल प्राप्त होंगे देवताओं की उपासना से वो क्षण भंगुर रहेंगे, थोड़े समय के लिए रहेंगे, नश्वर है वो लाभ। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे देवताओं के पास जाके भौतिक चीजों की प्रार्थना नहीं करता है। तद भवती अल्प भेदसाम, ऐसे केवल अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं। और जो इस प्रकार से देवताओं की उपासना करते हैं वो देवलोक चले जाते हैं, देवताओं के लोकों में जाते हैं, इंद्रलोक हो, चंद्रलोक हो इत्यादि। परंतु मत भक्तान याति माम अभी, लेकिन मेरे जो भक्त होते हैं वो मेरे पास चले आते हैं हे अर्जुन। तो देवलोक में और भगवान के धाम में बहुत बड़ा अंतर है। जब सृष्टि का संहार होगा, ब्रह्मा जी के जीवन के अवधि के अंत में, तो उस समय सारे स्वर्ग लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, यहां तक कि ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक का भी नाश होगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण का धाम वैकुंठ जगत, उसका नाश कभी नहीं होता है। इसलिए देवताओं के उपासक जो होते हैं उनको जो फल प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, और उनको जो गति प्राप्त होती है वो भी क्षणिक होती है, तो कोई लाभ नहीं होता। तो साधारण लोगों की देवता की उपासना करने में और ब्रजवासियों के देवताओं की उपासना करने में अंतर ये है। दूसरी बात ये है कि श्री कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं तो वो भगवान की भूमिका नहीं निभाना पसंद करते। दुनिया में समस्या ये है कि भगवान को छोड़कर सभी लोग भगवान बनना चाहते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। भले कोई कहे नहीं मैं तो भगवान नहीं बनना चाहता, लेकिन हाँ यदि हम भोग करते हैं या भोग करना चाहते हैं संसार का, इसका मतलब है हम भगवान बनना चाहते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांडों का मालिक या स्वामी मैं हूं, इसलिए भोग करने का अधिकार केवल मेरा है और किसी का नहीं है। न केवल मैं परम भोक्ता हूं, मैं एकमात्र भोक्ता हूं। और हम सब भोग्य हैं श्री कृष्ण के द्वारा, क्योंकि हम प्रकृति हैं, हम शक्ति हैं। तो जो भी व्यक्ति भोग करना चाहता है वो भगवान की नकल करना चाहता है, वो झूठा भगवान बनना चाहता है। और ऐसे झूठे भोगियों में से कई ऐसे भी लोग होते हैं जो घोषणा भी कर देते हैं, मन में सोचते भी हैं कि मैं भगवान हूं, और ऐसे कई दर्शन भी हैं जैसे मायावाद दर्शन आदि है जो कहता है कि हाँ आप सब हम सब भगवान हैं, केवल माया का जो पर्दा है वो हमारी बुद्धि को ढक रहा है इस समय। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये अज्ञान का पर्दा हट जाएगा और हम जान जाएंगे कि हम भगवान हैं। लेकिन स्वयं भगवान जो है श्री कृष्ण वृंदावन में भगवान बनना नहीं चाहते, वो एक साधारण ग्वाल बाल के रूप में लीला करते हैं और इसी में वो अधिक आनंद प्राप्त करते हैं। कभी कभी अपने भक्तों के आनंद को और प्रेम को और उनके आश्रय को बढ़ाने के लिए वो ऐसे कोई अद्भुत कार्य कर बैठते हैं, अपने ऐश्वर्य और शक्ति का कोई विशेष प्रदर्शन करते हैं जिससे अश्रद्धालु लोगों को भी ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में ये भगवान है, अन्यथा ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकता है, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को धारण करना। लेकिन साधारण तौर से वृंदावन में श्री कृष्ण एक ग्वालवाल के रूप में रहना पसंद करते हैं, तो और ब्रजवासी भी इसी भाव के हैं। इसी भाव में रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो भी श्री कृष्ण को भगवान कहके नहीं जानते, केवल हमारा एक प्यारा ग्वालवाल है, हमारा प्यारा मित्र है, हमारा प्यारा लाडला बच्चा है, हमारा प्रेमी है, ऐसे ही जानते हैं वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण को। और इसलिए प्रेम का मिठास जो माधुर्य है वो सर्वोपरि है वृंदावन में अन्य स्थानों के तुलना में। तो वृंदावन के निवासी जब पूजा अर्चना करना चाहते हैं, जैसे किसी धार्मिक व्यक्ति को करना चाहिए वैदिक सभ्यता के अनुसार, वैदिक सभ्यता में तो नास्तिकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, तो ये जब धर्म का पालन करना चाहते हैं किसी की उपासना तो करनी चाहिए, कभी नारायण की करते थे तो कभी शिव जी की करते थे, कभी कात्यायनी की करते थे, इस भाव से कि उनके लिए कृष्ण तो भगवान नहीं थे, हालांकि वो कृष्ण को इतना प्रेम करते थे कि कृष्ण ही उनके जीवन में सर्वस्व थे और भगवान को पूछते भी थे, कभी नारायण भगवान को भी पूछते थे, तो इसीलिए कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए। कृष्ण की रक्षा के लिए भगवान नारायण को पूछते थे कि इतने असुर आ रहे हैं, हे भगवान नारायण कृष्ण की रक्षा कीजिए, हे शिव जी कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ाइए, हे कात्यायनी देवी श्री कृष्ण को हमारे पति बनाइए, ऐसे ब्रजवासियों की प्रार्थना हुआ करती थी। तो इस भावना से ब्रजवासी वहां पर चले गए अंबिकावन। साथ साथ में देखिए भगवान श्री कृष्ण के अनेक उद्देश्य होते हैं, एक ही लीला के द्वारा वो अनेक उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जाते जाते सबके ऊपर कृपा बरसाना चाहते थे, क्योंकि वृंदावन से अंबिकावन जाना ये रास्ता तो बड़ा लंबा था, और जैसे हम अभी देख रहे हैं बैलगाड़ियों में बैठ के सब गए जा रहे थे, तो जाते जाते कितने सैकड़ों या हजारों हजारों लोगों ने श्री कृष्ण बलराम का दर्शन किया, और जैसे बैलगाड़ियों में बैठ के जा रहे थे तो जगह जगह पर लोगों ने घोषणा की, ऐसे जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू में कहते हैं, जगह जगह लोग जोर जोर से बोलते, अरे देखो कृष्ण है, ये है बलराम, ये है सुबल, देखो। तो सब जगह लोग बड़े आनंद से उत्तेजित हो रहे थे श्री कृष्ण और श्री बलराम जी का दर्शन करके। तो कितने लोगों को लाभ हुआ, और वहां जाकर अंबिकावन में उद्धार भी करना था उनको एक विशेष व्यक्ति का जिनके बारे में हम आगे चल के सुनने वाले हैं। तो खैर अंबिकावन में जाने की लीला प्रारंभ हुई शिव जी की उपासना करने के लिए। तो नंद महाराज ने आदेश दिया अपने भाइयों को उपनंद और अभिनंदन कि आप दोनों यहां रहना और गोकुल की और गायों की रक्षा करना और बाकी हम सब जो हैं हम जाएंगे अंबिकावन, क्योंकि ये विचार तो मन में आना चाहिए ना हमें भी कि सारा ब्रजभूमि सारा वृंदावन भी जा रहा है अंबिकावन, तो गायों को कौन देखेगा, गायों का देखभाल कौन करेगा। तो नंद महाराज ने अभिनंद और उपनंद उनके जो बड़े भाई थे उनको वहां निवेदन किया कि आप यहाँ रहिए और गायों की देखभाल कीजिए, गोकुल की हमारे घरों की रक्षा कीजिए, और बाकी सब बैठे बड़े बड़े लंबे लंबे बैलगाड़ियों में। और गोपाल चंपू में भी जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये बैलगाड़ी बहुत बड़ी थी, लंबी लंबी बैलगाड़ियां थी और बहुत तरह तरह के सामग्री और सामान वगैरह बैलगाड़ियों में रखे गए, और फिर अच्छे अच्छे कंबलों से युक्त सुशोभित एक बैलगाड़ी में श्री कृष्ण और बलराम जी बैठ गए, ऊपर बैठ गए, और उनकी रक्षा करने के लिए भी सनंद और नंदन पीछे पीछे आ रहे थे श्री कृष्ण के पीछे। और वैसे काफी हल्ला गुल्ला मच रहा था सब लोग, आप जानते हैं भारत में हम लोग हल्ला गुल्ला बहुत करते हैं, जहां भी जाइए इतने जोर जोर से सभी बात करते हैं। अभी हम विदेश से आए तो सबसे पहली बात यही सुनने में आती, जैसे ही भारत में हम पैर रखते हैं तो जोर जोर से सभी बात करते हैं, हवाई अड्डे के अंदर से लेकर जहां भी भारतीय लोग हैं हम याद रखिए जोर से बात होती है, हवाई जहाज में भी आवाज आ रही है तो यहाँ भारतीय लोग होंगे, हमारे देशवासी होंगे। विदेश में लोग हमने देखा है तो हल्के से बात करते हैं, सोच समझते हैं कि भाई सामने वाले को हमारे पड़ोसी को कोई परेशानी ना हो, रेलगाड़ी में हवाई जहाज में या कहीं हम खड़े हैं बस के अड्डे में थोड़े हल्के स्वरों में बात करेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, सामने भी कोई बैठा है लेकिन उसके बाजू वाले मोबाइल फोन उठा के इतने जोर से हलो हलो करेगा बात करेगा कि बेचारे सामने वाले पास में बैठने वाले की शांति भंग हो जाएगी। तो खैर बड़े धूमधाम से और आवाज भी करते हैं तो सामने वाले को देखते नहीं है, कतार में जाना है तो यहाँ कतार नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमने देखा है कि विदेशों में लोग कतार में अपने आप चले जाते हैं बल्कि सामने वालों को आगे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सामने वालों को पीछे हटा के हम किसी न किसी तरह से आगे बढ़ के चले जाते हैं। हमें सारे गलत चीजें पश्चिम देशों से सीखी है, यहाँ देश में जो अच्छी चीजें सीखनी चाहिए वो नहीं सीखी है। जी गाड़ी भी चलाते हैं तो उनका कितना कितनी मर्यादा से चलाते हैं, सामने से कोई आ रहा हो तो यहाँ आदमी गाड़ी को इस एक तरफ ले जाएगा या गाड़ी को रोकेगा साथ ही दूसरा सामने वाला चले जाए, और सामने वाला जब जाएगा तो हाथ ऊपर उठाएगा धन्यवाद कहने के लिए, फिर ये आदमी भी हाथ ऊपर उठाएगा कि नहीं कोई बात नहीं हम प्रसन्न है ये सेवा करने के लिए, ऐसे इशारा करते हैं। यहाँ गाड़ियों की हालत आप देखते हैं, यहाँ किसी बत्ती पे देखिए, लाल बत्ती हरी बत्ती या कहीं पे भी हर एक गाड़ी पहले घुसने की प्रयास करता है, इसलिए वहां पे सारे गाड़ियां अटक के पड़ जाती, कोई भी आगे नहीं पीछे नहीं जा सकता। तो एक मर्यादा है यहाँ हमारे देश में दिखाई नहीं पड़ती है, जोर से बात करना, दूसरों को स्थान नहीं देना आगे पीछे हटने के लिए। यहाँ बस में चढ़ना हो ट्रेन में चढ़ना हो तो देखिए दृश्य, दूर से खड़े होकर देखिए, हालांकि जगह सबके लिए है, सबका टिकट है और एक घंटा गाड़ी रुकने वाली है, फिर भी सबको पहले अंदर जाना है, धक्का मारेंगे और कुछ सामान पहले अंदर करेंगे। तो खैर भारत की ये परंपरा का चलती है, पुराने जमाने से कुछ ऐसे माहौल है। और एक अच्छी बात जब मैं देखी वहां वो है कि सब समय पर चीजें करते हैं, 4 बजे का समय है तो सब 4 बजे आते हैं, सत्संग 4 बजे तो सभी लोग 4 बजे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, भारत के आदि हो के लोग क्या सोचते हैं कि 4 मतलब 4:30 तो फिर 4:30 बजे आते हैं, तब तक फिर लोग बोलते हैं 4 बजे का समय था, 4:30 कैसे है? तो ऐसी अच्छी चीजें हम विदेशों से सीख सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजों को छोड़कर जो बुरी चीजें हैं वही हम स्वीकार करते जा रहे हैं हमारे देश। तो खैर, बड़े धूमधाम से ब्रजवासी तैयार हुए, अपने बर्तन सामान एकदम हल्ला गुल्ला मच रहा था, वो चले पड़े धूम, और उनके साथ में जो वाद्य है वो भी बजाते बजाते जय जयकार करते हुए, जय हो करते हुए सब निकल पड़े। और चलते चलते ऐसे काफी समय बीत गया, कई दिन बीत गए, और श्री कृष्ण जाते जाते ये भी देख रहे थे बड़े आनंद से कि जैसे जैसे वो अनेक प्रांतों से गुजरते हुए जा रहे थे तो लोगों की वेशभूषा सब अलग थी, लोगों की भाषा बोलचाल सब अलग अलग, दिखने में अलग अलग। ये सब देख के भगवान श्री कृष्ण को भी बड़ा आनंद हो रहा था कि लोग कैसे अलग अलग होते हैं। हम देखते हैं कि अलग, आप पंजाब में जाएंगे तो लोगों का बोलने का ढंग अलग है, दक्षिण भारत में जाएंगे अलग है, बंगाल में जाएंगे अलग है। तो श्री कृष्ण भी ऐसे अलग अलग प्रांतों से गुजरते हुए सबको देख रहे थे और अपने मित्रों के साथ बात कर, देखो देखो वो कैसे कपड़े पहने, देखो वो ऐसे है, बच्चे थे ना छोटे। इस समय वास्तव में श्री कृष्ण की आयु 9 साल की थी, गोवर्धन पूजा 7 साल की आयु में मनाई पहली बार, फिर 8 साल की आयु में रासलीला कर दी, और उसके बाद इस बार भी गोवर्धन पूजा मनाया, लेकिन पिछले साल के हिसाब से और भी सावधानी से और भी बड़े प्रेम से मनाया। तो गोवर्धन पूजा मनाने का जो त्योहार है या जो प्रथा है वो उस समय से चालू हुई और हर साल ब्रजवासी मनाते गए, तो इस साल भी उन्होंने मनाया। और फिर इसके बाद भी जब शिवरात्रि आई तो इस समय श्री कृष्ण 9 वर्ष के आयु के थे और सब अंबिकावन चल पड़े। तो इस प्रकार से आप पहुंचे अंबिकावन। अंबिकावन नाम इसलिए है क्योंकि दुर्गा देवी का नाम है अंबिका, जिसे कल भी हम शाम को सुन रहे थे, और शिव जी का स्थान है तीर्थ स्थान, लेकिन नाम है अंबिकावन। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जहां भी शिव जी का मंदिर है वहां दुर्गा देवी का मंदिर भी अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि दुर्गा देवी या अंबिका देवी वो पतिव्रता स्त्रियों में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, और जहां पति है वहां पत्नी है, तो इसलिए जहां पर शिव जी है वहां दुर्गा देवी या अंबिका देवी अवश्य पास में रहती हैं। तो अंबिका देवी का भी मंदिर वहां है, इसलिए जगत का नाम है अंबिकावन। और ऐसे एक रिवाज है, रीति है, प्रथा है कि जब हम किसी तीर्थ स्थान में पहुंचते हैं तो हम सर्वप्रथम मुंडन करवाते हैं और फिर स्नान करते हैं और उपवास रखते हैं, दिन भर उपवास और रात को थोड़ा बहुत जलपान। तीर्थ यात्रा के नियम इस प्रकार से होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा आधुनिक रंग हमने दे दिया है, हम पहुंचते हैं तो पिज्जा विज्जा सब तैयार होता है तीर्थ स्थानों में जाके अलग अलग जगह। तो नंद महाराज और ब्रजवासियों ने इसी प्रकार से तैयारी कर ली। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि प्रथा तो ये है कि 3 दिन ऐसे कम से कम एक तीर्थ स्थान में रहना चाहिए, और वहां स्नान आदि करने के बाद, दर्शन आदि करने के बाद, फिर वहां के निवासी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो नंद महाराज ने अन्य ब्रजवासियों के साथ में ऐसे अच्छी तरह से दान दिया सारे ब्राह्मणों को, गाय सोना और अनेक चीजें, ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं, अन्न अनाज आदि दान में दिया। तो ब्राह्मणों को इसलिए दान दिया जाता था उस समय क्योंकि ब्राह्मण को व्यवसाय आदि नहीं करते थे, वो केवल ब्राह्मण के कर्तव्यों को निभाते थे। वो क्या था? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन पाठन मतलब शास्त्रों को पढ़ना और अन्यों को पढ़ाना और सुनाना, यजन याजन मतलब यज्ञों को संपन्न करना और दूसरों को सिखाना कि कैसे यज्ञ करना चाहिए, दान प्रतिग्रह, दान स्वीकार करना, और आवश्यकता से अधिक जब धन मिल जाता था दान में तो उसे दान में दे देना अन्यों को, योग्य व्यक्तियों को। ब्राह्मणों के कार्य विशेष करके होते थे अध्ययन करना और तपस्या करना, तो क्योंकि ऐसे योग्य ब्राह्मण थे उस समय तो सभी लोग ऐसे किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया है, अभी हम देखते हैं कि प्राय ऐसे ब्राह्मण नहीं दिखाई पड़ते। हाँ, जाति ब्राह्मण तो हैं, परंतु गुण से, योग्यता से ब्राह्मण बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, थोड़े बहुत लेकिन बहुत कम। अधिकतर दुर्भाग्यवश वो थोड़े लोभी हो जाते हैं और इसलिए कई लोग तीर्थ स्थान में जाना भी बंद करते हैं और वो तपस्या नहीं करते, सरल जीवन नहीं जीते, नहीं वो शास्त्रों का अध्ययन गंभीरता पूर्वक करते हैं। इसलिए दान देने की जो रिवाज है वो भी अब मिटती जा रही है। हालांकि लोग देते हैं लेकिन पहले जैसे नहीं, और इसलिए अभी लोग ब्राह्मण का कार्य करना भी नहीं चाहते क्योंकि दक्षिणा लोग भी कम देंगे तो कैसे जिएंगे। तो ये अभी एक विकट समस्या है। लेकिन कृष्ण भावनामृत का पालन करके, प्रचार प्रसार करके ही इस अवस्था को पुनः ठीक किया जा सकता है। तो खैर, ऐसे नंद बाबा और ब्रजवासियों ने ऐसे कर दिया और फिर सारे अनुष्ठान वगैरह करके रात को वो सरस्वती नदी के तट पे वहीं पे सो पड़े। देखिए, पिछले जमाने पूर्व कालों में जीवन कितना सरल हुआ करता था। आजकल जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो कोई धर्मशाला होटल चाहिए, कोई अच्छी व्यवस्था चाहिए, लेकिन नंद महाराज और ब्रजवासीगण, उन्होंने क्या किया, बस सरस्वती नदी के तट पे वहां आए, वहां पे सो पड़े रात को, अपना बोरी बिस्तर बैलगाड़ी सब रख के वहीं पे सो गए रात को। कोई उनको धर्मशाला की आवश्यकता नहीं, कोई होटल की आवश्यकता नहीं, वैसे भी उपवास कर रहे थे और उस जमाने में होटल नाम की कोई चीज भी नहीं हुआ करती थी। ये तो आधुनिक पिछले 100-200 सालों की बात है कि लोग भोजन बेचते हैं। वैदिक सभ्यता में भोजन बेचने का कोई सवाल ही नहीं था। तो यदि जा रहा हो, ऐसे कई पुण्यवान लोग रहते थे जो ऐसे पुण्य कार्य करते थे, जैसे यात्रियों को भोजन खिलाते थे और तीर्थ यात्रा में जाने वाले लोगों को छाया मिले इसलिए बड़े बड़े पेड़ भी वृक्षारोपण करते थे। आजकल भोजन बेचने की बात तो दूर है, जल बेच रहे हैं और दूध से महंगा है जल। इंग्लैंड में हम गए थे, वहां पर ऐसी ही परिस्थिति है, दूध सस्ता है, जल खरीदने जाएंगे बोतल में वो महंगा है, क्योंकि वो गायों को कतल खाने भेज देते हैं और किसान को ऐसे कमाई हो जाती है काफी, इसलिए दूध उनके लिए सस्ता पड़ जाता है। अब सभी की विचारधारा ऐसे चलती है, गाय को एक दूध का यंत्र मान के चलते हैं। तो महंगाई में तो कम है दूध, लेकिन पाप कितना होते जा रहा है इसका विचार कोई नहीं करता है। तो आजकल भोजन बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, हवा भी बेच रहे हैं, प्रदूषण इतना है कि सब जगह जाने के लिए लोग तरह तरह के वो सब पहन के जाते हैं। तो खैर, वहां पे ब्रजवासी रात को सो पड़े, बड़े आनंद से थके हुए थे इसलिए अच्छी गहरी नींद में आ पड़े। और उस समय हुआ ये कि एक बहुत बड़ा सांप वहां चले आया, विशाल था वो, और ब्रजवासी सभी लोग सो रहे थे और सीधे नंद महाराज के पास आए और उनको निगलने लगे पैरों से। तो नंद महाराज नींद से जाके देखा कि अरे, बहुत बड़ा सांप मुझे निगल रहा है। तो फिर नंद महाराज बोलने लगे, बहुत जोर से चिल्लाए,
कृष्ण कृष्ण महान अयम सर्पो माम प्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय।
हे कृष्ण कृष्ण, एक बहुत बड़ा सांप मुझे निगल रहा है, मैं शरणागत हूं तुम्हारे चरणों में, मुझे बचाओ। परिमोचय प्रपन्नम, मैं शरणागत हूं। हालांकि श्री कृष्ण नंद महाराज के पुत्र थे और नंद महाराज श्री कृष्ण को पुत्र के सिवा और कुछ नहीं मानते थे, फिर भी अनुभव से, अब 9 साल तो बीत गए थे ना, 9 सालों में नंद महाराज ने बहुत कुछ देखा था। कितने असुरों का वध इस छोटे बच्चे ने किया था, पूतना का वध कब किया था भगवान ने, जब वो केवल थोड़े दिनों के मात्र थे, महीने भी नहीं हुए थे। और फिर शकटासुर, तृणावर्त आदि बाल्य अवस्था से शुरू होकर पौगंड अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों का वध किया था। और जब भी ब्रजवासियों को कोई कष्ट होता था तो अवश्य श्री कृष्ण उनको उस कठिन परिस्थिति से मुक्त कर देते थे। 2 बार एक दावानल हुआ, जंगल में आग लग गई, भगवान कृष्ण ने आग को निगल लिया आसानी से। ऐसे कितनी बार संकट आए, विपद आए ब्रजवासियों के ऊपर, लेकिन श्री कृष्ण ने बड़े आसानी से खेल खेल में उन समस्याओं को निपटा लिया। लेकिन वृंदावन की विशेषता ये है कि इतना सब देखने के बाद भी ब्रजवासियों का प्रेम शिथिल नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ, ऐश्वर्य से भर नहीं गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब ये हमारा बच्चा नहीं, अब ये भगवान है। हाँ, कभी कभी बाकी ब्रजवासी कभी कुछ भ्रमित हो जाते थे, इस बच्चे ने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया कैसे नंद बाबा, ये क्या कोई देवता है, कोई जादू है, क्या कोई विशेष आदमी है ये। नंद बाबा कहते नहीं नहीं, ये सब भूल जाओ, ये तो बच्चा है हमारा। फिर बाकी ब्रजवासी जो स्वभाव से बहुत सरल और सीधे साधे थे, भोले भाले थे, फिर वो मान जाते हैं, हाँ ये तो हमारा लाडला कान्हा है, ये कौन सा भगवान होगा। तो एक ओर से वो कृष्ण को देख रहे थे अद्भुत से अद्भुत शक्ति का प्राकट्य करते हुए, दूसरी ओर उनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना तीव्र होता था कि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। फिर भी जब भी कष्ट होता था, कृष्ण बचाओ हमें, कृष्ण बचाओ, आओ आओ, कृष्ण आ जाते थे और कृष्ण बचाते थे उनको अवश्य। लेकिन उसके बाद ठीक है, कृष्ण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कृष्ण कितना सुंदर काम कर दिया, लेकिन है हमारा लाडला। ये उनकी बुद्धि यहां तक नहीं चली कि इतना छोटा लाडला बच्चा ऐसे कार्य कैसे कर सकता। उनका प्रेम इतना तीव्र था, इसलिए वो इस बात को ज्यादा गहराई से सोच और समझ नहीं पाए, विश्लेषण ज्यादा दूर तक नहीं कर पाए। तो नंद महाराज ने भी ऐसे कृष्ण कृष्ण कह के पुकारा और पास में सोने वाले अन्य जो ब्रजवासी पुरुष थे वो भी जागे। उन्होंने भी देखा कि अरे क्या हो गया है, तुरंत उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र सब निकाले और बड़े जोर से प्रहार किया उस विशाल सांप के ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ा, उस सांप ने नंद महाराज को अपने मुंह से छोड़ा नहीं। फिर बाद में उन्होंने बहुत बड़े बड़े आग के लकड़ियां लिए, आग जलाई और फिर उससे पीटने लगे सांप को, ताकि कम से कम सांप अपना मुंह खोल ले ताकि नंद महाराज निकल जाए। लेकिन सांप ने छोड़ा नहीं। उस समय कृष्ण वहां चले आए, कृष्ण थोड़ी दूरी पर अपने मित्रों के साथ सोए हुए थे। तो कृष्ण जल्दी से आए, केवल उन्होंने अपने चरण कमलों का स्पर्श उस सांप से किया और जैसे ही स्पर्श किया वैसे एक अद्भुत चमत्कार हो गया। वो सांप के शरीर से एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी प्रकाशमान तरह तरह के अलंकारों से सुशोभित एक व्यक्ति प्रकट हो गया। ऐसे लग रहा था कि देवलोक से कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रकट हो चुका है। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आभूषण आदि उसके शरीर पे थे, दिखने में भी बहुत सुंदर था यह व्यक्ति।
तो फिर जैसे ही
ये व्यक्ति प्रकट हो गया तो सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये गांव के भोले भाले ब्रजवासी सांप को मारने के बाद उसमें से एक ऐसे व्यक्ति प्रकट हो रहा है, देख रहे हैं तो उनकी क्या दशा हुई होगी। आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। तो उस समय श्री कृष्ण ने सामने आकर उस व्यक्ति से पूछा, अरे आप कौन हो महोदय, आप कहां से आए हो और आपका रूप इतना सुंदर है और इतने अच्छे वस्त्र आभूषण आपने धारण किए हुए हैं, फिर भी आपको ऐसे सांप जैसा एक नीच योनि या शरीर कैसे प्राप्त हुआ? आपने ऐसे कौन से जघन्य कार्य किए होंगे जिनके कारण आपको ऐसा नीच जन्म प्राप्त हुआ है? तो श्री कृष्ण जब ऐसे पूछा, श्री कृष्ण तो सब जानते हैं लेकिन अन्यों के लिए और हम सब के लिए ताकि हम सब जाने उन्होंने ये प्रश्न किया। फिर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं एक विद्याधर हूं और मेरा नाम है सुदर्शन। आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, पृथ्वी लोक तो बीच के लोक, बीच का एक लोक है, 14 भुवन हैं इस ब्रह्मांड में और ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। तो पृथ्वी लोक जिसको भूलोक कहते हैं वो बीच वाला भाग है इस ब्रह्मांड का। इसके ऊपर भी और कई लोक हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्ग भुवरलोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ऐसे ये विद्याधर भी उनके ऊपरी लोकों में रहते हैं। ये भुवरलोक और स्वर्गलोक के बीच में के सब हिस्से हैं, भुवरलोक, स्वर्गलोक, ऐसे विद्याधर लोक, गंधर्व लोक, ऐसे कई लोक हैं। और ये थोड़े देवतागण हैं लेकिन देवताओं से थोड़ा कम इनका स्थान होता है। जैसे गंधर्व होते हैं जो बहुत सुंदर गीत गाते हैं, सिद्ध लोक के निवासी होते हैं जिनको जन्म से ही तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, चारण लोक, विद्याधर लोक। तो विद्याधरों का लोक से ही ये व्यक्ति आए थे सुदर्शन। तो कहने लगे कि मेरा शरीर बहुत सुंदर है, बड़े ऐश्वर्य से मैं रहता था और एक हवाई जहाज में मैं सारे ब्रह्मांड में इधर उधर घूमता फिरता था, लेकिन एक बार हुआ ये कि मेरे ऐश्वर्य सौंदर्य आदि के कारण मेरे हृदय में घमंड आ गया और घमंड के कारण एक बार मैंने जब अंगिरा मुनि के वंशज हैं जो साधु थे, ब्राह्मण थे, उनको देखा तो उनके ऊपर मैं हंस पड़ा, उनका मजाक मैंने उड़ाया, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मैं अभी ऐसे सांप बन गया और अभी आपने मुझे मुक्त कर दिया है। अब देखिए ये विद्याधर सुदर्शन भौतिक दृष्टि से कितने ऊंचे पद पर थे, ऐसा सुंदर शरीर, ऐश्वर्यशाली जीवन, ऐसा ऊंचा जन्म, इतनी शक्तियां, सिद्धियां, सब कुछ था, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है उसका भौतिक पद जितना भी ऊंचा क्यों ना हो वो इन तीन गुणों के, इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अधीन ही रहेगा, सत्व रजस और तमस। और कोई भी व्यक्ति इन तीन गुणों के अधीन रहते हुए अपने स्थान को बनाए नहीं रख पाएगा, उसका पतन होगा ही होगा। यदि कोई व्यक्ति सत्व गुण में भी है उसको सत्व गुण में रहने के लिए भी कृष्ण भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि यह रजगुण और तमोगुण का प्रभाव भौतिक सृष्टि में इतना प्रबल है कि सात्विक व्यक्ति को भी वो नीचे खींच ले आएगा। तो तो ऊंचे से ऊंचे पद वाले व्यक्ति को भी अपने स्थान में रहना बहुत मुश्किल है बिना कृष्ण भक्ति किए हुए। कृष्ण भक्ति करते करते भी हम देखते हैं कि माया कितनी प्रभावशाली है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता है वो भले कितने भी ऊंचे स्थान में क्यों ना हो, वो कैसे अपने स्थान को अपने परिस्थिति को बनाए रख पाएगा? ये संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी
कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में बताते हैं कि वास्तव में
हर एक व्यक्ति को, विशेष करके जिसको कोई भौतिक दृष्टि से ऊंचा पद है, बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि उसके हृदय में घमंड नहीं आए। घमंड आ जाता है तो पतन हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन कृष्ण भक्त सुरक्षित रहता है क्योंकि वो जानता है कि मैं केवल कृष्ण के सेवकों का सेवक मात्र हूं और मुझे ऐसे ही रहना है जीवन में। तो ऐसे एक नम्रता की भावना उस भक्त के लिए एक कवच के बराबर है जो उसकी रक्षा करता है पतन से। नम्रता के कारण और ऐसे कृष्ण भक्ति की भावना के कारण एक भक्त भले किसी पद को प्राप्त करे भक्ति में भी या बौद्धिक जगत में भी, वो उस पद को बनाए रख पाएगा। लेकिन जैसे ही घमंड आता है तो खतरा भी आ जाता है।
इसलिए ऐसे देखा जाता है
कि कृष्ण भावना विहीन या रहित जो व्यक्ति रहता है, उसके पास यदि ऐसे कोई भौतिक संपत्ति आदि रहते हैं तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों का पतन हो जाता है और पाप काम करने लगते हैं और धीरे 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 से ऐसे कार्यों में लग जाते हैं जो कि उनको करना नहीं चाहिए, असभ्य कार्यों में लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हम सबको चेतावनी देते हैं और ये सारे शास्त्रों के उदाहरण हमारे लिए बहुत अनुसरणीय हैं, श्रवणीय हैं कि देखो ऊंचा, इतना ऊंचा पद का व्यक्ति, वो भी पृथ्वी लोक का आदमी नहीं है, विद्याधर लोक का आदमी है जो कि पृथ्वी लोक के पद से, भौतिक पद से कहीं ज्यादा ऊंचा है, वो भी एक साधारण सांप बन गया। तो फिर यहां पृथ्वी लोक की बात बारे में क्या कहना है? और सांप जो होता है वो पशुओं में से भी सबसे नीच माना जाता है क्योंकि ऐसे लोगों को सांप की योनि मिलती है जो बहुत ईर्ष्यालु थे, जो बहुत घमंडी थे, जिन्होंने अन्यों के प्रति बहुत अपराध किए होंगे, ऐसे व्यक्तियों को सांप की योनि मिलती है अगले जन्म में। तो खैर, तो अपना परिचय उस व्यक्ति ने दिया और फिर सुदर्शन ने कहा कि वास्तव में उन ऋषियों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी। शाप तो दिया लेकिन उस शाप के कारण मैं अभी आपका दर्शन कर पा रहा हूं, आपके चरण कमलों का स्पर्श मेरे शरीर से हुआ है और इसलिए मेरे जीवन में जितने भी अशुभ हैं वो सब अब नष्ट हो चुके हैं। हाँ, जब वास्तव में साधु होते हैं जो, वो यदि श्राप भी देते हैं हमें तो वो श्राप हमारे भलाई के लिए ही होता है। जो सत्मार्ग में चलने वाले और स्थित व्यक्ति होते हैं, जो संत होते हैं, वास्तविक संत होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो श्राप देते हैं तो उसमें मंगल ही मंगल होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो सोचता है कि अरे मुझे श्राप मिल गया, लेकिन उस शाप के अंत में जो होगा उससे उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। आपने अहल्या का नाम तो सुना होगा। अहल्या के पति गौतम ऋषि ने शाप दे दिया अहल्या को, क्योंकि तुमने गलत काम किया है तो तुम पत्थर बन जाओ। लेकिन अहल्या ने फिर कृपा याचना की, क्षमा याचना की, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए हमें। तो ऋषि ने कहा कि जो एक मेरे मुख से शाप निकल गया, उसको मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आने वाले त्रेता युग में जब स्वयं भगवान श्री राम के रूप में आएंगे, उनका चरण कमल का स्पर्श होगा इस पत्थर से या तुमसे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और वैसे ही हुआ, जब श्री रामचंद्र वनवास में गए तो फिर उसी जगह से गए जहां अहल्या लाखों लाखों सालों तक एक पत्थर के रूप में बैठी हुई थी। फिर जैसे ही श्री राम के चरण कमलों के स्पर्श हो गए, फिर वो पत्थर का उद्धार हुआ, अहल्या देवी को अपना मूल रूप पुनः प्राप्त हुआ। तो देखिए, श्री राम तो निकले थे, इसलिए दशरथ महाराज कैकेयी और दशरथ महाराज की वजह से, लेकिन उद्देश्य था आगे चल के रावण की हत्या करना, दुष्टों का विनाश करना और हनुमान सुग्रीव आदि के ऊपर कृपा करना और यहाँ अहल्या जैसे भक्तों का भी उद्धार करना। तो भगवान के एक कार्य में कितने सारे उद्देश्य होते हैं। उसी प्रकार से कुबेर के दो पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव, इन्होंने भी नारद मुनि के प्रति अपराध किया, उनको भी बहुत घमंड हो गया था उनके सौंदर्य और ऐश्वर्य का, और वो थोड़े स्त्रियों के साथ रमण कर रहे थे एक नदी में, नग्न अवस्था में थे, उन्होंने नारद मुनि को देखा भी नहीं और देखने के बाद भी उन्होंने परवाह नहीं की, अपने आप को ढका नहीं। तो नारद मुनि के मन में कृपा भावना आई कि ये इतने गिरे हुए हैं, इतने ऊंचे कुल के जो देवताओं के खजांची हैं कुबेर, इनके पुत्र हैं, इतना ऊंचा जन्म मिला है, लेकिन देखो उनके कार्य कैसे नीच हैं। तो इनकी जो विकृत बुद्धि है इसको ठीक करना चाहिए। तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम नग्न अवस्था में रहना पसंद कर रहे हो तो जाओ वृक्ष बनो। पेड़ जो होते हैं वो कोई वस्त्र पहनते नहीं है, इसलिए विशेष करके जो लोग अपने शरीर को ठीक से वस्त्रों से ढकते नहीं है तो उनको एक पेड़ का शरीर मिलता है अगले जन्म में, इसलिए विदेशों में इतने पेड़ पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं बहुत सारे। तो खैर, पेड़ के रूप में जन्म तो मिला अर्जुन वृक्ष के रूप में, लेकिन हालांकि लाखों साल उनको भी प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में स्वयं श्री कृष्ण ने उनका उद्धार कर दिया और उनको भक्ति प्रदान कर दी। सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टकम में कहते हैं, कुबेरा आत्मजो बद्ध मूर्त्यो यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे परेच्छा न मोक्षे ग्रहो मे स्थिति दामोदरेह। वो कहते हैं कि कुबेर आत्मजो, आत्मजो मतलब कुबेर के पुत्र, आत्मजो कुबेर से उत्पन्न होने वाले, आत्मजो मतलब द्विवचन है। तो कुबेर के दो पुत्र मूर्त्यैव पत्थर, मतलब वो बद्ध अवस्था में थे, वृक्ष के शरीर में थे, और उनको त्वया मोचितौ आपने उनका उद्धार कर लिया है कृष्ण, भक्ति भाजौ कृतौ च, और आपने न केवल उनको वृक्ष के रूप से उद्धार किया, आपने उनको प्रेम भक्ति भी प्रदान कर दी। तो हम आपसे ऐसे ही प्रेमा भक्ति चाहते हैं हे कृष्ण। न मोक्षे ग्रहो में स्थिति दामोदरेह, तो हे दामोदर, मैं आपसे मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं रखता हूं, केवल मुझे प्रेमा भक्ति चाहिए, तो उसी प्रकार से मुझे प्रेमा भक्ति दीजिए जैसे कि आपने कुबेर के पुत्रों को दिया था। तो देखिए, कुबेर के दो पुत्रों का सौभाग्य, अहो सौभाग्य, कहां वो पाप करते हुए बैठे थे स्वर्ग लोक में, और कहां उनको फिर शाप मिला, दो वृक्षों का शरीर प्राप्त हुआ, एक सबसे नीच जन्म, और फिर ऐसे तपस्या करने के बाद, ऐसे कष्ट स्वीकार करने के बाद फल क्या मिला? स्वयं श्री कृष्ण का दर्शन वृंदावन में, और श्री कृष्ण ने उनको स्वयं प्रेमा भक्ति प्रदान कर दी। तो फिर क्या ऐसे पेड़ रहने में कोई नुकसान हुआ उनको? कितना फायदा हुआ? तो नारद मुनि ने जो उनको श्राप दिया वो उनके भलाई के लिए था? वो श्राप था वास्तव में या वरदान था? वरदान था। उसी प्रकार से गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया अहल्या को वो भी वरदान था, क्योंकि वो अहल्या का उससे उद्धार हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से ये विद्याधर सुदर्शन भी कह रहे हैं कि मैं जान रहा हूं अभी कि उन ऋषियों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, और ये श्राप तो कह, ये तो वरदान है, क्योंकि आप जो जगत गुरु हैं, सारे सृष्टि के आप आदि गुरु हैं, आपके चरण कमलों का स्पर्श मेरे शरीर से हुआ और मैं अब इस नीच अवस्था से मुक्त हो गया। और वास्तव में हे प्रभु, जो व्यक्ति इस भौतिक सृष्टि से भयभीत रहते हैं, तो उनके भय को आप नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये भक्त आपके शरण को स्वीकार करते हैं, और अभी आपके चरण कमलों के स्पर्श मात्र से सारे अशुभ चीजें, सारे पाप मेरे चेतना से निकल गए हैं। तो अब मुझे कृपा करके आदेश दीजिए और मुझे अनुमति दीजिए मेरे विद्याधर लोक में लौट के जाने के लिए, क्योंकि विद्याधर लोक में उनको भी उनके कर्तव्य थे ना, तो उनको लौट के जाना था। तो उन्होंने अनुमति ली कि कृपया मुझे अब जाने दीजिए। जिस प्रकार से नलकोबर मणिग्रीव ने भी श्री कृष्ण से अनुमति ले ली, प्रेम भक्ति तो मिल गई उनको, परंतु उनको कर्तव्य निभाना था। अभी तक कुबेर के पुत्र थे, उनको और जाके और उनकी सेवा करनी थी। जैसे कि यहाँ हमारे आंदोलन में भी, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में, संघ में भी कोई शुद्ध भक्त बन भी जाए तो ऐसा नहीं कि अब तो सारी सेवा छोड़ देगा, नहीं, सेवा जारी रखेगा, लेकिन वही सेवा और भक्ति से और प्रेम से करेगा। तो खैर, फिर वो कहने लगा कि हे प्रभु, केवल आपका दर्शन करने मात्र से मेरे पाप सारे नष्ट हो गए। लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो आपके नाम का उच्चारण करते हैं, जिसके कारण उनका जीवन पावन हो जाता है, और जो उन नाम को सुनते हैं उनका जीवन भी पावन हो जाता है। लेकिन मैंने न केवल आपको देखा है और आपके नाम को सुना है, स्वयं आपके चरण कमलों का स्पर्श मेरे शरीर से हुआ है, तो मेरा अहो सौभाग्य है, मैं कितना भाग्यशाली हूं। और इस प्रकार से फिर वो सुदर्शन विद्याधर उस स्थान को छोड़ के, भगवान की अनुमति पाके, वो विद्याधर लोक में चले गया। इधर सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण ने और एक बार एक चमत्कार करके दिखाया था, अपनी आंखों के सामने ब्रजवासियों ने देखा था कि कैसे श्री कृष्ण ने केवल उस भीषण सांप को केवल स्पर्श करके उसको ऐसे मार डाला था, और उस सांप के भीतर से ऐसे एक विद्याधर व्यक्ति आया, वो उड़ के वापस चला गया आसमान में। ये सब ब्रजवासी देख रहे हैं। और फिर अंबिका वन में अपनी तपस्या पूजा आदि करके सब वृंदावन की ओर निकल पड़े, और जाते जाते भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो केवल श्री कृष्ण का गुणगान करते रहे। अरे देखो, श्री कृष्ण ने ऐसे किया, देखा, वो सुदर्शन विद्याधर था, उसका उद्धार इस प्रकार से किया। तो ऐसे श्री कृष्ण का गुणगान करते करते ये सारे ब्रजवासी वापस चले गए। इस प्रकार से इस अध्याय के अंदर जो पहली लीला है ये सुखदेव गोस्वामी समाप्त करते हैं, और दूसरी लीला अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि ये दूसरी लीला कौन सी थी और उसमें क्या हुआ, आपको कल शाम यहां मंदिर में आना होगा। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे कृष्णा।
भक्ति के लिए सत्वगुण में रहना